प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज द्रास में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस हमें यह बताता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है। जम्मू कश्मीर में हाल में आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में भी अपने सभी नापाक प्रयासों में विफल रहा है, लेकिन वो आतंकवाद और छद्म युद्ध का सहारा लेकर स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आतंकवाद के सरपरस्तों को बताना चाहते हैं कि उनके नापाक इरादे कभी भी पूरे नहीं हो सकते और भारतीय जवान पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे तथा देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये देश में होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और इससे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि उनका बलिदान और वीरता प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर करगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। संसद के दोनों सदनों में करगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सैनिकों ने युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये सदन सैनिकों की असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को नमन करता है। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा फिर शुरू हुई। लोकसभा में भाजपा के जुगल किशोर ने कहा कि ये बजट आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भाजपा की कंगना रनौत ने बजट में हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। कांग्रेस के जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हरियाणा की लंबित परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि बजट किसानों की चिंताओं का समाधान करने में असफल है। राज्यसभा में वाईएसआरसीपी के एस निरंजन रेड्डी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में अल्पकालिक लोक लुभावन विचारों के बजाय मध्यम और दीर्घकालिक विचारों को अपनाया है। वहीं सीपीआई सदस्य पी संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि बजट जन विरोधी और संघीय विरोधी है। राजद के एडी सिंह ने देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। भारत ने एशियाई आपदा प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम में कमी और जलवायु परिवर्तन में सहयोग और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत एट 2047। इस बैठक में विकसित भारत पर दृष्टिपत्र के प्रस्ताव पत्र पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने नागरिकों को सोमवार से शुरू होने वाले शीर्ष अदालत के विशेष लोक अदालत सप्ताह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में न्यायमूर्ति गवई ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय देश के दूरदराज के हिस्सों में रहने वाले नागरिकों के लाभ के लिए एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालतों का आयोजन कर भारत महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में आज शाम 7 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। फाइनल रविवार को होगा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की शुरुआत आज से होगी। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का आयोजन पेरिस में सीन नदी के किनारे भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से होगा। शरद कमल और पीवी सिंधु परेड में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।